बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद पर एतराज़ात के ज़िमन में आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो शिर्क की माफ़ी के पहलू से है। कुरान मजीद में ये बात सारी उम्मत जानती है कि ये बात कही गई है कि अल्लाह ताला शिर्क से माफ़ नहीं करेगा, बाकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है। लेकिन साथ ही एक अजीब बात है कि मुस्तशरकीन ये कहते हैं कि कुरान मजीद में इस पहलू से भी तज़ाद पाया जाता है कि जब हज़रत मूसा के ज़माने में यहूद ने एक सोने का बछड़ा बनाकर उसकी परस्तिश शुरू की, तो उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि वह अफ़ौना अनजालिक, हमने उनको इससे माफ़ कर दिया। तो मुस्तशकीन ने ये एतराज़ उठाया है कि एक तरफ अल्लाह ताला कहते हैं मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा, और दूसरी तरफ मूसा की कौम को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। ये एतराज़ कुरान मजीद को पूरी तरह से या नाकिस तरीके से पढ़ने से पैदा हुआ है। कुरान मजीद ने ये जो हज़रत मूसा की कौम को माफ़ किया तो ये सज़ा के बाद माफ़ किया था। सूरह बकरा की 45वीं आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने उनको माफ़ कर दिया इस शर्त पर कि फ़क्तुलू अनफुसकुम, वो अपने उन लोगों को कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क किया है। चुनाचे ये तौरात और इंजील और पुरानी किताबों में और हमारी भी पुरानी तफसीर की किताबों में ये बात वाज़े अल्फाज में लिखी गई है कि सुबह से लेकर शाम तक 7,000 लोग कत्ल किए गए थे। ये छोटी सज़ा नहीं है। शिर्क की ये सज़ा देने के बाद बाकी कौम को जिन्होंने शिर्क नहीं किया हुआ था उनको कहा कि कौम की हैसियत से तुम पर अज़ाब आना चाहिए था, लेकिन सुम्मा अफ़ौना अनज़ालिक, हमने इस मसले को इतना सख्त नहीं किया, सिर्फ उन्हीं को सज़ा दी जिन्होंने बछड़े को पूजा था। तो ये एतराज़ नाकिस मुताले की वजह से है। कुरान मजीद में शिर्क की सज़ा की माफ़ी का ऐलान है नहीं है, लेकिन साथ ही जो ये ऐलान किया गया कि हज़रत मूसा की कौम को माफ़ किया गया तो ये सज़ा के साथ है, यानी सज़ा भी दी गई और जो बाकी लोग थे जिन्होंने शिर्क में हिस्सा नहीं लिया था उनके लिए अल्फाज बोले गए कि अफ़ौना। दूसरी बात जो इस पहलू में ये वाज़े रहनी चाहिए कि यहूद और बाकी अकवाम का मामला रसूलों के ज़माने का है। रसूलों के ज़माने का कानून अलग है और आम हालात का कानून अलग है। यानी आज बहुत सारे लोग शिर्क कर रहे हैं लेकिन उनको सज़ा नहीं मिल रही, तो उसकी वजह यह है कि असल में सज़ाएं आखरत में मिलनी हैं। सिर्फ रसूलों का ज़माना एक ऐसा ज़माना होता है कि जिसमें रसूल के हाथों से, रसूल के साथियों के ज़रिए से या आसमान से अज़ाब आकर कौम को सज़ा देता है। तो हज़रत मूसा के साथियों को सज़ा मिली उनके अपने ही बहन भाइयों के ज़रिए से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशरिकीन को सज़ा मिली सूरह तौबा के मुताबिक खुद सहाबा की तलवारों से। कुरान अल्फाज भी यही इस्तेमाल किए हैं कि युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से अज़ाब देगा। तो रसूलों के ज़माने में तो क़्यामत की तरह से मामला साफ़ कर दिया जाता है, सज़ा लाजमन आती है, लेकिन आम हालात में जब रसूल मौजूद नहीं होता या रसूल मौजूद हो और कौम दूसरी हो जिसमें रसूल नहीं है तो उनके अंदर सज़ा नाफिस नहीं की जाती, वो मामला क़्यामत को टाला जाएगा। तो ये आयत के अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर देगा सवाए शिर्क के, ये असल में क़्यामत से मुतल्लिक है। लेकिन मैंने दोनों बातें वाज़े कर दी ताकि ये बात वाज़े हो कि शिर्क की सज़ा जिस आयत से माफ़ी का जिक्र निकाला गया है वो दरहकीकत माफ़ी का बयान नहीं है, वो सज़ा के बाद का मामला है। और दूसरी बात ये कि ये आयत जिसमें शिर्क की माफ़ ना करने का बयान किया गया है ये दरहकीकत आखरत से मुतल्लिक है। उम्मीद है कि ये एतराज़ भी रफ़ा हो गया होगा। तो अगली नशिस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।